Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna. तो आप बैठते हैं क्लास में तो अपना नोटबुक पेन श्लोका बुक हाँ ये सब चीज़ें आवश्यक हैं। तो रोज़ हमें एक ही कार्य करना है, श्रवण करना है, कीर्तन करना है और नोट्स बनाने हैं। तो पिछली बार हमने डिस्कस किया था कि जो ब्रह्मचारी है उसका जो एटीट्यूड है हाँ भक्तिमय जीवन में किस प्रकार का होना चाहिए, उसमें कई चीज़ों पर हमने चर्चा की थी। और प्रभुपाद कहते हैं कि हम यहाँ शुद्ध भक्त बनने के लिए आए हैं और हम शुद्ध भक्त बन सकते हैं, केवल हमें क्या करनी चाहिए, हाँ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होनी चाहिए कि मुझे शुद्ध भक्त बनना है। ये इच्छा होने मात्र से हाँ हम शुद्ध भक्ति की ओर बढ़ सकते हैं या शुद्ध भक्त बनने के रास्ते में उन्नति कर सकते हैं। और इसके अलावा कई और चीज़ें डिस्कस की थी कि कितने हम फॉर्चुनेट हैं, हाँ श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में हैं और भगवान भी कहते हैं बहु नाम जन्म नाम अंते मनुष्यानाम सहस्रेशु। तो इस प्रकार से और जय जना भजे कृष्णा से बड़ा चतुर, चतुर व्यक्ति कौन है इस संसार में जो कृष्ण का भजन करता है, भक्ति करता है। तो अल्टीमेट हमारा एटीट्यूड यही है कि हम अपने हर एक एक्टिविटीज़ के द्वारा गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करें। और ब्रह्मचारी की भावना यही होनी चाहिए कि मैं तो यहाँ आश्रम में हूँ गुरु के हित के लिए, गुरु का हित में। ब्रह्मचारी गुरु कुले वसंदान तो गुरु रिता, कि ब्रह्मचारी गुरु के आश्रम में रहता है। हम किसके शेल्टर में हैं, अभी श्री गुरु के शेल्टर में हैं, उनके ऊपर ही हाँ एक प्रकार से हम देखें कि हमारा जो जीवन निर्वाह हो रहा है। हाँ इतना अच्छा महल आपको रहने को नहीं मिल सकता, इतना अच्छा भोजन आप घर में भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं, इतने अच्छे फेस्टिवल्स भी आप अटेंड नहीं कर सकते हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए ब्रह्मचारी ये सुने सोचे कि हम कितना ले रहे हैं, हाँ हमारे हम क्या कर रहे हैं, केवल गुरु से वी आर एक्सेप्टिंग टेकिंग ले रहे हैं, क्या मैं गुरु के लिए कुछ दे रहा हूँ। हाँ तो ये भावना उसके हृदय में होनी चाहिए और उसे गुरु की सेवा के लिए ईगर होना चाहिए। हाँ ये उसका जो प्राथमिक मनोभाव होना चाहिए। तो कलयुग में जो कृष्ण भावना है बहुत सरलता से अवेलेबल हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं और कैसे अवेलेबल है कि चैंटिंग एंड डांसिंग के द्वारा। प्रभुपाद कहते हैं कि मेरा ये जो आंदोलन है इसमें केवल तीन कार्य करने हैं, चैंटिंग डांस में चार कार्य, चैंटिंग डांसिंग फास्टिंग फिस्टिंग। हाँ चैंटिंग करना है, डांसिंग करना है, फास्टिंग फिस्टिंग। तो चैंटिंग का मतलब है हरे नाम का कीर्तन करना है, जाप करना है और उसी हरे नाम में हमें नृत्य करना है। लेकिन भावना ये होनी चाहिए कि इसके द्वारा मैं कृष्ण को प्रसन्न करूं, अपने इंद्रियों को नहीं, अपने कई प्रकार के मनोभावों को नहीं, चैंटिंग डांसिंग फास्टिंग और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वैष्णवों की प्रसन्नता के लिए तपस्या को स्वीकार करना। फास्टिंग क्या है, एक तपस्या है, भूखा नहीं रहना चाहते हम। तो फास्टिंग करने से इंद्रिय निग्रह होता है, फास्टिंग करने से क्या होता है, एक डिटर्मिनेशन भी बढ़ता है और इंद्रियों पर एक प्रकार से इंद्रियां उत्तेजित नहीं होती, क्योंकि जितना अधिक खाते हैं उतनी जो इंद्रियां हैं उत्तेजित तेजवान होती हैं। हाँ, इसलिए कहा गया है कि ब्रह्मचारी को रात को ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, विशेषतः राइस नहीं खाना चाहिए और कई कई चीज़ें। तो जितना अधिक हमारा पेट भरा होगा प्रसाद से, उतनी ज़्यादा इंद्रियाँ उत्तेजित होगी या फिर शिथिल होने लगेगी। शिथिल का मतलब है कि आपको क्लास में ड्राउजीनेस, नींद आने लगेगी, मन में लगेगा वो कब क्लास ख़त्म हो जाए, कब मैं सोने को मिलेगा मुझे अच्छे से, लंबा 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 चाहिए मुझे। तो इस प्रकार से जो ब्रह्मचारी हैं वो फास्टिंग मतलब उसको उपवास स्वीकार करना चाहिए। तो वॉलेंटरली तपस्या को स्वीकार करना कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कि आपके सामने कई चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें, लेकिन आप स्वयं तपस्या स्वीकार करते हो, हाँ, तो इससे क्या होगा कि ये भावना नहीं तो, लेकिन यही अभ्यास रेगुलर वो तो टूट पड़ जाते हैं हम। दूसरे दिन गोवर्धन पूजा, फास्टिंग के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा। क्योंकि गोवर्धन कृष्ण क्या है, जब गिरिराज का जो ये लगता है अन्नकूट फेस्टिवल होता है ना, तो कृष्ण कहते हैं अन्योर जब सारे ब्रजवासी से ऑफर करते हैं कई प्रकार के व्यंजन, तो कृष्ण खाते ही जा रहे, सारा खत्म कर दिया। तो कृष्ण अन्योर कहते हैं, अन्योर मीन्स मोर, ब्रिंग मोर। हाँ, तो वहाँ ये गांव भी हैं परिक्रमा में अन्योर नाम का। तो लेकिन ये जो फास्टिंग है, क्योंकि हमें बीमारियाँ आती है ज़्यादा खाने से, ये याद रखिए आप ब्रह्मचारी जीवन में, जितना अधिक हम, क्योंकि यहाँ क्या है, क्योंकि हम अपने बॉडी को कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते। एक्सपीरियंस है यार कुछ सालों का, बॉडी को आप चाहे कितना भी ना कंफर्ट्स, फैसिलिटीज, फूड ये सब देते रहो, वो कल सुबह फिर चाहिए उसको, है ना। हाँ कहते नहीं आज ही खाऊंगा, आज बस आज स्वीट राइस, कल से नहीं। तो कल भी आवश्यकता होती है, क्योंकि सेंसेस इतनी ये है, वो हर समय मांग करती है, इंद्रियां मांग करती है। तो ये वैसे कहा जाता है, जैसे कोई भी व्यक्ति सोचता है नहीं बस अभी मैं ये इंद्रिय तृप्ति करो थोड़ा सा, हाँ, और फिर नहीं, तो वो इंद्रिय तृप्ति क्या होती है, बढ़ने लगती है। लेकिन हम कंट्रोल करें उस पर, निग्रह करें, मैं भी थोड़ा सा तपस्या, इसलिए यू हैव टेंडेंसी टू बिट द डिवोटीज, यानी बिट योर माइंड। जैसे हमें कई होता है फिजिकली हाथ ऐसे ऐसे करने लगते हैं, कई बार ना भौतिक जगत में देखा कोई कुछ बोल दे तो बस हाथों को मतलब थप्पड़ लगाना, फिजिकल फाइट। तो ब्रह्मचारी जीवन में आने के बाद भी वो हैबिट्स रहती है, किसी को बीट करो ना, मारो, कुछ करो ना, लगता है कि नहीं हाथों को ये आती है, पाँव हिलने लगते हैं। कीर्तन में नहीं, किसी को मारने के लिए, किक करने के लिए। तो आज जो बीटिंग टेंडेंसी है तो क्या करना चाहिए, बीट योर माइंड, माइंड को ये करो, मारो। हाँ, माइंड चाहता है, क्या चाहता है, हर समय उसको कोई ना कोई चीज़ चाहिए। इसलिए ये जो फास्टिंग है वो आवश्यक है, लेकिन ये भी नहीं है कि फास्टिंग नहीं, प्रभु जी मैं फास्टिंग, आई डोंट वांट टू डू एनी सेवा, बस मैं फास्टिंग कर रहा हूँ, आज एकादशी है, राधा अष्टमी है, आपके सुपीरियर आते हैं और आपको कहते प्रभु जी सेवा, नहीं प्रभु जी आज फास्टिंग है बस, और उसे हिलाने जा रहा है, बेड पर लेटा है पूरे दिन और घड़ी लगा हुआ है, निर्जला कर रहा हूँ मैं, और वो घड़ी में देख रहा है दूसरे दिन फास्टिंग टाइम, फास्ट ब्रेकिंग टाइम कब है। तो मतलब ऐसे फास्टिंग कोई लाभदायक नहीं है, इसलिए प्रभुपाद ने इंट्रोड्यूस किया था एकादशी के दिन भी क्या होता है, फास्टिंग होता है। तो लेकिन एक्चुअली जो एकादशी है, भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं कि वो हमारा वो है स्केल एक प्रकार से, इस एकादशी से इस एकादशी तक हमें अपॉर्चुनिटी है अपने आप को एनालाइज करने के लिए, मतलब अपना परिशोधन करने के लिए इस एकादशी से इस एकादशी 15 दिन में मैंने क्या उन्नति की भक्ति में, क्या मैंने मुझ में कुछ कमियां थी मेरे साधना में मेरी सेवा में। हाँ, और तो उसको ब्रह्मचारी को हर 15 डेज में क्या हर रात को सोते समय स्मरण करना चाहिए। लेकिन भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं कि आप वाउज ले लो, व्रत ले लो, इस एकादशी से उस एकादशी तक आई हैव टू डू दिस सेवा, लर्न सम श्लोका, लर्न सम नो पास टाइम्स, कुछ मुझे इस एकादशी से इस एकादशी तक कुछ सीखना है, श्लोका सीखूंगा इतने या इतना मैं रीडिंग करूंगा, इतनी सेवाएं करूंगा। तो टारगेट्स बनाने चाहिए, टाटा टारगेट अचीवमेंट। टाटा का मतलब क्या है? टारगेट अचीवमेंट। तो आध्यात्मिक जीवन में भी आवश्यक है, नहीं तो हमारा जो लाइफ है इजी गोइंग लाइफ हो जाएगा और कहेंगे वाह वंडरफुल लाइफ, हाँ, कोई नौकरी नहीं है, कोई बॉस नहीं है, कोई DTC बस का ट्रैवलिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस कितना अच्छा जीवन जा रहा है। सुबह रात को सो जाओ, सुबह उठो तो बस नाचने लगो, नाचते थोड़ा तो प्रसाद की प्लेट सामने आ जाती है, प्रसाद पाओ पता नहीं कितना। एक माता जी कह रहे थे कि आपके ब्रह्मचारी बहुत ज्वाली हैं, ज्वाली मीन्स बहुत मस्ती में, पूरे संसार में इनका जीवन ही सुखी है। क्यों माता जी? तो कहती है कि इन लोगों को बाहर का पता ही नहीं है, आलू के रेट क्या है और टमाटर के रेट क्या है। हाँ, और इनको बस सीधा प्लेट आ जाती है उनके सामने, मस्त खाते फिस्टिंग, कोई चिंता नहीं है। हाँ, लेकिन बाहर के लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जब सब्जी खरीदने जाते हैं तो कितना बार्गेनिंग होता है कि नहीं, 1 रुपया के लिए, लेकिन हमारे लिए तो पता ही नहीं है कितने किलो आलू आ रहे हैं, कितना तेल आ रहा है, कितना आटा आ रहा है, और कुकिंग भी नहीं करना पड़ रहा है, कुकिंग में पता चलता है कितना आपको कष्ट होता है। हाँ, इस प्रकार से यदि हम सोचे कि बहुत अच्छा ये जीवन है ब्रह्मचारी जीवन, इजी गोइंग लाइफ, चलो बहुत आराम से जीवन यापन करने का एक नया वे ऑफ लाइफ मिला है, तो ऐसा ब्रह्मचारी जिसकी ये भावना है वो कभी भी कृष्ण भावना में उन्नति नहीं करेगा। तो कृष्ण भावना ये बोल्ड व्यक्तियों के लिए है एक प्रकार से, जो जिम्मेदारियां लेते हैं और स्ट्रगल करते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो इस प्रकार से हमें इसमें अटक नहीं जाना चाहिए, आगे होना चाहिए हमें कृष्ण भावना में हर समय, सेवा और साधना और सब चीज़ों में आगे दौड़ना चाहिए, अपने आप को आगे लाना चाहिए। तो ये जो इजी गोइंग लाइफ है वो ब्रह्मचारी के लिए सबसे डेंजर है, और उसको ऐसे जीवन की हमें आदत नहीं डालनी है कि बस क्लास हो गया सो जाओ, फिर ठीक है जब क्लास होगा तब उठेंगे, नहीं। चिंता होनी चाहिए, क्या चिंता होनी चाहिए? मेरा जो मृत्यु है अभी नज़दीक आ रहा है, हाँ मृत्यु के नज़दीक हूँ मैं, कभी लगता है मृत्यु नज़दीक है? नहीं लगता, बिग इल्यूजन, बहुत बड़ा भ्रम है। हाँ, प्रभुपाद को एक माता जी ने पूछा लॉस एंजलिस में कि प्रभुपाद मैं भक्ति में आगे कैसे बढ़ूँ, तो प्रभुपाद ने कहा कि तुम सोचो कि अगले क्षण में ही मेरी मृत्यु होने वाली है, इसलिए जो चैंटिंग हम करते हैं तो ये भावना जो भक्त रखते हैं कि मैं जो माला ये कर रहा हूँ ये मेरी आखिरी माला है, हाँ क्योंकि मेरा मृत्यु अगले क्षण में है, आखिरी मन का यहाँ तक भी आते हैं डिवोटीज, आखिरी मन का, और मन के भी आधा मंत्र है या व्हाटएवर, तो हरे कृष्णा खत्म। हाँ, तो इस प्रकार से ये जो भक्तिमय जीवन में ये चिंता होनी चाहिए, क्योंकि आप देखोगे बाहरी जीवन में हम अपने माता पिता को भी देखते हैं, आपने देखा है कि नहीं कितना चिंता होता है उनको, स्टडीज की चिंता है। हाँ मेरा बेटा नौकरी कर रहा था, वो छोड़ के यहाँ साधु बन के बैठा है, मैंने पढ़ने के लिए भेजा गाँव से, एक साल हो गया अभी तक कहाँ है। तो ऐसे कई प्रकार से आप देखो हम उस सिचुएशन में होते हैं तो हम भी उतने ही चिंता करते हैं। तो भौतिक जीवन में लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं हर समय में, हर समय आगे बढ़ने के लिए। तो उसी प्रकार हम शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हमें भी चिंता होनी चाहिए कि मेरा ये जो क्या कहते हैं जीवन है, मेरा ये जो शरीर है वो कभी भी छूटने वाला है, जल्दी छूटने वाला है, तो मुझे बहुत सावधान होना चाहिए। क्योंकि ऐसा मत सोचिए कि यहाँ आ गया हूँ तो अभी मैं बच गया हूँ। कई प्रकार से ये भावना आती है कि नहीं अभी कई चीज़ों से मैं बच गया, मुझे बुढ़ापा नहीं आएगा मुझे मृत्यु नहीं आएगी, टेंपल में हूँ मैं, हाँ भूकंप बाहर आ सकता है, अर्थक्वेक ना, हम कभी सावधान नहीं होते हैं, बल्कि देखा जाए कितना भयावह जीवन है। तो जो सिंसियर डिवोटी है वो हर समय ये सोचता है कि मेरा ये जो लाइफ है बहुत कम समय के लिए है और मुझे इसको पूरी तरह से यूटिलाइज करना चाहिए अपनी चेतना को शुद्ध करने के लिए और कृष्ण का शुद्ध भक्त बनने के लिए। इस भावना में नहीं रहना चाहिए कि मैं नहीं मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तभी शरीर छोड़ूंगा, नहीं। तो इस प्रकार से ये चिंता हमें होनी चाहिए और हमें इसलिए इससे क्या होगा कि हमारा ईगरनेस बढ़ेगा कार्य करने के लिए। हाँ तो आप क्या करोगे, तो ईगर ना, नहीं तो नहीं भैंस की तरह रहोगे फिर। हाँ नहीं अभी तो बहुत समय है मंगल आरती आटिंग को, अभी क्यों ध्यानपूर्वक जाप करने की आवश्यकता नहीं, और थोड़ा साल हो जाने दो मुझे तब मैं जाप करूँगा ध्यानपूर्वक, मैं अभी क्या क्यों पढ़ूँगा, नहीं नहीं अभी तो मैं यंग हूँ थोड़ा मस्ती कर लेता हूँ, मस्ती करता हूँ थोड़े ये करता हूँ। तो इस प्रकार से हमारा मन और कई प्रकार के बहाने हमें प्रदान करता है। फिर हमारा जो लवले है, जब शुरुआत में हम आते ज्वाइन करते हैं आते हमें लगता है कि अभी मैं जब पहली बार ज्वाइन करते हैं इस्कॉन और फिर कीर्तन में नाचते हैं प्रसाद पाते हैं और लगता है कि मैं अभी शुद्ध भक्त बन गया हूँ, लगता है कि नहीं हाँ लगता है, शुरुआत के दिनों में लगता है मैं शुद्ध भक्त हूँ, हाँ ऐसा ही लगता है। फिर लेकिन जो शरणागति है जब वो शुरू हो जाती है, जब आपको शिक्षा दी जाती है, आपको सेवा में लगाया जाता है, आपके ऊपर कोई अधिकारीगण वॉच रखते हैं, तब पता चलता है कि आप शुद्ध भक्त हो या क्या हो। तब शरणागति से पता चलता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं शुरुआत की जो चेतना है वो एक उत्साहमयी है, शुरुआत की जो भावना उत्साहमयी, हम आते बड़े उत्साहित रहते हैं हर चीज़ के लिए, प्रभु जी बढ़ार वाई से ही रहना चाहिए जीवन भर। लेकिन जब शरणागति की बात आती है तब हम, क्योंकि एक बार कृष्ण भावना में आते हैं तो फिर वास्तविक आपका जो रोड है वो शुरू हो जाता है शरणागति का। तो शरणागति के पहले सिद्धांत है अनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूल्यस्य वर्जनम। कृष्ण के प्रति शरणागत है या नहीं है उसका पता कैसे चलता है, अनुकूल्यस्य संकल्प पहला है। षडांग शरणागति, छह प्रकार की जो शरणागति है उनमें से एक है कि अनुकूल्यस्य संकल्प, जो भक्त है फेवरेबल चीज़ों को स्वीकार करता है, भक्ति में जो अनुकूल चीज़ें हैं, भक्ति में जो आगे बढ़ने वाली चीज़ें हैं उनको स्वीकार करता है। हाँ अच्छे भक्तों का संग करना ये एक अनुकूल चीज़ है। हाँ केवल कृष्ण प्रसाद ही ग्रहण करना ये एक अनुकूल है कृष्ण भावना में। और ग्रंथों का अध्ययन करना ये एक अनुकूल है, और क्या हो सकता है। तो इस प्रकार से पता चलता है कि कितने हम शरणागत हैं यदि हम अनुकूल चीज को ग्रहण करते हैं, और प्रतिकूलस्य वर्जनम, जो भक्ति के लिए बाधक है उन जो प्रतिकूल चीजें हैं उनको हम क्या करते हैं, त्याग कर लेते हैं, तो शरणागति का पता चलता है। इसलिए ये बहुत आवश्यक है, चैंटिंग, डांसिंग, फास्टिंग ये एक अंग है हमारे लिए उससे, और आखिरी है फिस्टिंग। तो प्रभुपाद कहते ये कृष्णा कॉन्शियसनेस है, दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद कोई सेंटेंस बोलते तो आगे कहते दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, दिस इज योर बिजनेस। लेक्चर सुनेंगे तो प्रॉब्लम बहुत बढ़ी आएगी। हाँ, तो जो फिस्टिंग है आगे चल के हम चर्चा करेंगे, ईटिंग के बारे में। आप ड्रामा भी कर सकते हैं ईटिंग का, प्रसादम सर्व करने में आपको कुछ रियलाइजेशन आए होंगे, प्रसाद खाने जब आप बैठते हैं तो आपने कुछ रियलाइजेशन होंगे। वंडरफुल ड्रामा हो सकता है। आप सर्व कर रहे हो और स्वीट राइस का ग्लास आपका आधा ही भरा है और वो डिवोटी आगे चल जाता है तो आप चिल्लाते हो इतना जोर से कि आप रियली उतना कृष्ण को लाउडली कॉल करोगे तो कृष्ण आपके हो जाएंगे। और वो जाते हैं, वो आगे चल जाते हैं और फिर आप देखते मेरा ग्लास आधा ही भरा है, नितिन प्रभु स्वीट राइस बांट रहे थे 4 सेकंड हरि बोल, मतलब ऐसे हो गया कि बिल्कुल इसके जो इस इतना लाउडली कृष्ण को कॉल किया जाए तो कृष्ण हमारे हो जाएंगे। तो इस प्रकार से कई और हम रियलाइजेशन शेयर कर सकते हैं, ड्रामा प्रिपेयर कर सकते हैं, या आप बता सकते हैं ना क्या किस प्रकार की।
एक छोटा रिलेशन है कि पहले बहुत ही जगह तो बोलते थे ना कि ओए भैया जैसे भी कुछ बोलते थे, अब ना वो मिल गया, मतलब अप्रूवल मिल गया, हरी बोल चला सकते हैं जोर से, प्रसाद टेम्पल हॉल में जोर से हरी बोल, भगवान के सामने जब ड्यूटी से सामने पर बोल मिल गया, हरी बोल बोलना चिल्लाओ।
अच्छा, एक प्रकार वहाँ कर सकते हैं हम ग्रुप प्रोग्राम में, ग्रुप प्रोग्राम में कर सकते हैं, ड्रामा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रभुपाद कहते हैं कि ये कृष्णा कॉन्शियसनेस है, चैंटिंग, डांसिंग, फास्टिंग और फिस्टिंग। तो कई बार हम किसी एक चीज से बहुत ये हो जाते हैं ना, कुछ पदार्थ होते हैं जो हमें बहुत अटैच करते हैं, जो हम प्रसाद पाते हैं ना, सबसे जो स्वीट राइस है या सब हलवा प्रसाद है पनीर है, और तो मतलब कई प्रकार से, तो मे भी हमें कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ये करती हैं जिसका चिंतन हमें बहुत होता है उस फूड का, तो हमें उसको सर्व करें, सारे डिवोटीज को बांटे, सबसे आखिरी में अपनी प्लेट में डालें, तो जो टेंडेंसी है उस चीज़ के प्रति जो आकर्षण या जो अटैचमेंट का स्वभाव है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उतना ही कृष्ण की ओर फिर हम बढ़ सकते हैं। तो ये जो फिस्टिंग है, तो ये इसलिए है फिस्टिंग ताकि हम कृष्ण प्रसाद के अलावा किसी और चीज़ की डिमांड ना करें। तो ब्रह्मचारी हम आगे पढ़ेंगे कि जो फूड है वो बाकी चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए, चॉकलेट्स, बिस्कुट्स, ब्रिटानिया या कोई भी आनिया हो उन्हें पार्ले या क्रैक जा, तो बाहर के ब्रेड अभी तो ऑप्शन है हमारे यहाँ तो, लेकिन मैं भी तो इस प्रकार से ये चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे हम। तो प्रभुपाद कहते हैं चैंटिंग, डांसिंग, फास्टिंग, फिस्टिंग। तो प्रभुपाद एक जगह कहते हैं, डोंट थिंक दैट दिस चैंटिंग एंड डांसिंग विल नॉट लेड टू द डिजायर्ड गोल। तो कई बार सोचेंगे कुछ ऐसे आध्यात्मवादी होते हैं, सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिस्ट, वो सोचते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, इससे थोड़ी इनको कुछ कृष्ण प्रेम मिलने वाला है, ये लोग नाच रहे, गा रहे, खा रहे हैं, इनको क्या मिलेगा भक्ति और कृष्ण प्रेम। क्योंकि लॉर्ड चैतन्य को भी ऐसे ही हुआ था उनके साथ, प्रकाशानंद सरस्वती क्या कहते थे, ये सन्यासी होकर इसको तो वेदांत का अध्ययन करना चाहिए, हाँ ये तो भावुक की तरह क्या कर रहा है, हाँ नृत्य कर रहा है, भाव की तरह नृत्य कर रहा है, इससे कोई जो लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं होगा। तो प्रभुपाद कहते हैं, डोंट थिंक दैट दिस चैंटिंग एंड डांसिंग विल नॉट लीड टू द डिजायर्ड गोल, इट विल। इट इज द एश्योरेंस ऑफ लॉर्ड चैतन्य दैट वन विल गेट ऑल परफेक्शन बाय दिस प्रोसेस। तो ये जो विधि महाप्रभु ने या श्रील प्रभुपाद ने दी है, हमें फिक्स्ड हो जाना चाहिए उस पर, चाहे किसी भी सिचुएशन में हम क्यों ना हो। जो प्रभुपाद ने हमें वो लाइफ दिया है, ये आर्ट आर्ट ऑफ आर्ट ऑफ डेथ, आर्ट ऑफ डाइंग, आर्ट ऑफ डाइंग, तो हम आर्ट ऑफ लिविंग नहीं है, आर्ट ऑफ डाइंग में आर्ट ऑफ लिविंग इंक्लूड है। तो हम क्या सीख रहे हैं यहाँ, आर्ट ऑफ डाइंग सीख रहे हैं। ये आर्ट ऑफ डाइंग क्योंकि अल्टीमेट हमारा गोल क्या है, अंत है नारायण स्मृति। हाँ, कि मृत्यु के समय मुझे श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण हो जाए, यह हमारे जीवन का लक्ष्य है। हमारे जीवन का लक्ष्य कोई और नहीं है। इस प्रकार से हम पूरा जीवन हमारा बिताएं, इस प्रकार से हम अपने लाइफ को मोल्ड करें कि मृत्यु के समय चाहे हम किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, हमें किसका स्मरण हो जाए, कृष्ण का। तो ये आर्ट ऑफ डाइंग जो श्रील प्रभुपाद ने प्रोसेस दी है, उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। और इसलिए ये जो हरि नाम है वो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो श्रील प्रभुपाद और जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं उनके द्वारा हमें मिली है। क्योंकि हम यहाँ पागल होने के लिए आए हैं, ये भी एक पागल क्या है, पागल खाना है। हाँ, क्योंकि लॉर्ड चैतन्य पागल थे तो उनके जो अनुयायी हैं वो भी क्या होने चाहिए, पागल होने चाहिए। वो आप चैतन्य चरितमृत पढ़ेंगे तो उसमें कई स्थानों में आता है, रघुनाथ दास गोस्वामी उनका कभी मन ही नहीं लगता था घर में। हाँ, हर समय कितनी बार हो गए वो भागते थे, महाप्रभु के पास जाते थे। उनके माता पिता बहुत परेशान हो गए, बेटे की शादी करवा दी, बेटे को धन दे दिया, सब दे दिया, लेकिन बेटा घर में नहीं रहना चाहता। हाँ, वो भागता है महाप्रभु के लिए भागता है। तो वैसे ही जो इस्कॉन से जुड़ते हैं वो भी रघुनाथ दास गोस्वामी की तरह ही क्या करते हैं, भागते हैं, पागल हो जाते हैं। तो कृष्णदास कविराज कहते हैं कि उनके फादर कहते रघुनाथ दास गोस्वामी के कि ये जो बेटा है, उनकी अपनी वाइफ को कहते कि ये तुम्हारा जो बेटा रघुनाथ दास है, चैतन्य चंद्रेर बातुल है या जहारे, कि चैतन्य महाप्रभु का बातुल, बातुल मीन्स पागल। हाँ, बातुल ये पागल हो गया है, किसके लिए, चैतन्य महाप्रभु के लिए, इसका ब्रेन वॉश कर दिया है। हाँ, तो इसको वो कहते हैं कि इसको कोई रोक नहीं सकता किसी चीज़ से, या भी पागल हो गया है। तो महाप्रभु कैसे पागल थे और उनके अनुयायी कैसे पागल थे, कैसे थे, भावुक नहीं थे। वो सारे प्रॉपर प्रोसेस विधि और शास्त्रों को जानते थे। हाँ, इसलिए लॉर्ड चैतन्य कहते हैं कि मैं पागल हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। गुरु ने क्या किया था, उनको मंत्र दिया था,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो लॉर्ड चैतन्य ने जब मंत्र लिया और तो महाप्रभु कहने लगे, हे गोसाई, हे मेरे गुरुदेव, किबा मंत्र दिला गोसाई किबा तार बल, जपिते जपिते मंत्र करिला पागल। कि हे गुरुदेव, आपने कौन सा मंत्र दिया है मुझे, क्योंकि इसको जितना अधिक जाप करते जा रहा हूँ उतना ही अधिक मैं पागल होते जा रहा हूँ। हाँ, तो ये हमारा गोल जीवन का लक्ष्य है। हाँ, कि हम क्या बनना है, हाँ, ये हरिनाम। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अभी कल से शुरू कर दो कुछ ऐसा नया पागल पंजापा में तो मुझे टेंशन उठानी पड़े कि नहीं प्रभु जब मैं पागल हो पागल का मतलब है वो सच्चा, हाँ, हम्बल एंड सबमिसिव होता है सेवा के लिए, ये पागलपन है। इज रियली हम्बल टॉलरेंट एंड सबमिसिव टू डू वॉट एवर सेवा। हाँ, गुरु इज आस्किंग जो भी सेवा गुरु चाहते हैं उसके लिए वो रेडी होता है। तो लॉर्ड चैतन्य इस बात को कहते हैं। तो हमारे जीवन का भी यही लक्ष्य है कि हम इस कृष्ण भावना की जो सुंदर विधि है उसको इतना अच्छी तरह से फॉलो करने का प्रयास करें अच्छे डिवोटीज के एसोसिएशन में। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, एसोसिएट विद फ्यू, कुछ ही भक्तों का संग करो लेकिन बाकी सबको आदर दो। तो कुछ ही डिवोटीज का हमें संग करना चाहिए जिससे हमें आध्यात्मिक स्ट्रेंथ मिलती है, और बाकी सब भक्तों का हम दूर रह के क्या करें, आदर करें, उनको आदर करें, तो हम फिर इस रोड की ओर आगे बढ़ेंगे। और ये करेगा ब्रह्मचारी तो उसके अंदर ये दृढ़ श्रद्धा जागृत होगी। क्या? क्योंकि अभी भी हम डगमगाते हैं, क्या होगा, मैंने तो घर छोड़ दिया है, कुछ पाप तो नहीं लगेगा मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे भाई, हाँ तो लगता है कि क्या है सब, सही में कोई कृष्ण की भक्ति करने से उनकी देखभाल, मतलब उनका योगक्षेम वहाँ में होगा कि नहीं होगा, हाँ कुछ और कार्य तो नहीं, देवी देवताओं का क्या होगा, हाँ मेरे सिस्टर का क्या होगा, मेरे फादर मदर का क्या होगा। तो क्यों? क्योंकि यदि प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि दृढ़ हो जाती है हमारी जो श्रद्धा, श्रद्धा शब्द कहले सदृढ़ विश्वास, कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृता है, कि कृष्ण की ऐसी श्रद्धा आ जाती है कि कृष्ण की भक्ति करूँगा तो सारे कार्य, हाँ बाकी कोई और कार्य किसी के लिए करने की आवश्यकता नहीं है। यदि मैं कृष्ण की के लिए सारे अपने कार्य करूँ, इसलिए ये दृढ़ श्रद्धा लानी है तो हमें दृढ़ता से शरणागत होना होगा। और फिर ब्रह्मचारी लाइफ ज्वाइन करने के बाद ये नहीं सोचना चाहिए, आपने अभी पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, मुड़ के नहीं देखे बार बार भौतिक जीवन को, क्या होगा क्या होगा, तो फिर वो आगे नहीं बढ़ेगा, जितना पीछे देखेगा उतना ही वो पीछे चला जाएगा। हमें तो आगे देखना है, आगे कौन है, गुरु और कृष्ण है, हाँ उनसे हम दूर हैं, हमें तो आगे दौड़ लगानी है, हाँ मैराथन आगे बढ़ना है, आगे दौड़ना है। जितना पीछे देखते रहेंगे उतना ही जो पुलिंग पुलिंग अटैचमेंट्स हैं, माँ खींच रही है, पिताजी एक टांग खींच रहे हैं, माँ एक टांग खींच रही है, बहन एक टांग खींच रही है, फादर चिल्ला दे ब्रदर चिल्ला रहे हैं, तो ये बेचारा जितना पीछे देखेगा उतने ही उनकी उनकी आंखों से आंसू उसको दिखाई देंगे और फिर इसके भी हृदय से आंखों से आंसू की धारा निकलने लगेगी। तो इसलिए हमें तो आगे देखना है और हमारा जीवन ऐसे बनाना है उस घोड़े की तरह, जो घोड़ा बारात के समय आपने देखा होगा, उसके वहाँ मैं कल फरीदाबाद में चर्चा कर रहा था इस घोड़े की, उसको यहाँ वो फ्लैप होते हैं आँखों के वहाँ लगे होते हैं ना, उसको यहाँ नहीं दिखाई देता ना यहाँ, अन्ना पीछे तो दिखाई नहीं देता, वहाँ क्या दिखाई देता उसको, जीवन का लक्ष्य क्या है मेरे, हाँ एक कुरु नंदन, हे अर्जुन क्या दिखाई दे रहा है तुझे, द्रोणाचार्य कहते हैं क्या दिखाई दे रहा है, हाँ हाँ मुझे बस पक्ष की आग दिखाई दे रही है। तो वैसे हमें गुरु और श्री कृष्ण के चरण कमल दिखाई देने चाहिए बस, हाँ चरणों का आश्रय मतलब आप रेडी हो उनके लिए हर एक चीज करने के लिए, यह है गुरु के और कृष्ण के चरणों का आश्रय लेना। तो इस प्रकार से हमें उस घोड़े की तरह होना चाहिए जो ना यहाँ ना वहाँ ना पीछे के अटैचमेंट्स, हाँ तो वो सीधा केवल आगे बढ़ता है। तो इस प्रकार से क्योंकि पीछे देखते रहेंगे तो हम फॉल डाउन हमारा निश्चित है, हमारा क्या हो जाएगा, फॉल डाउन हो जाएगा। तो इसलिए हाँ तो ये आवश्यक है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। क्यों? और अभी क्यों नहीं पीछे जाना चाहिए, क्योंकि अभी आपको समझना चाहिए कि मैं बहुत आगे आ चुका हूँ, मैं क्या कर चुका हूँ, बहुत आगे, अभी मैंने जो कुछ जो रेखाएं हैं उनका उल्लंघन करके आगे आ गया हूँ, बॉर्डर को पार कर चुका हूँ, अभी मुझे फिर से वापस नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी धोती कुर्ता धारण कर लिया है, कोपिन भी पहन लिया है, कंठी भी धारण कर ली है, तिलक भी धारण कर लिया है, हेड भी शव कर लिया है, सेफ्रॉन भी धारण कर लिया है, अभी मैं बहुत आगे आ चुका हूँ, अभी पीछे जाना बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए। तो अभी आगे आ गए हैं तो आगे ही बढ़ने की सोचनी चाहिए हमें, अभी पीछे जाने की नहीं सोचनी चाहिए। तो ये मनोदशा होनी चाहिए हमें, नहीं तो आगे आ रहा है और पीछे के बारे में जोरदार चिंतन हो रहा है तो ये बहुत ही डेंजर है। हाँ, एक प्रकार से आसुरिक प्रभाव है। हाँ, कि अभी मैंने सब मटेरियल लाइफ छोड़ दिया है, अभी मुझे पत्नी की कोई ये आवश्यकता नहीं है, मुझे घर की आवश्यकता नहीं है, मुझे बच्चे नहीं चाहिए, मुझे बॉस नौकरी नहीं चाहिए, मुझे सैलरी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल कृष्ण प्रेम चाहिए। हाँ, तो पूर्ण शरणागति की ओर हमें बढ़ना चाहिए। हाँ, क्योंकि हमारे लिए सैलरी क्या है कई बार, क्योंकि ब्रह्मचारी जीवन मतलब उसका अपना कोई समय नहीं है और उसका अपना कोई बैंक बैलेंस बैंक अकाउंट नहीं है और कोई सैलरी नहीं है उसको, और नो हॉलीडेज। क्या नो हॉलीडेज? मत सोचे कि हॉलीडे संडे आएगा, नहीं, हमारे लिए हर रोज दिन हॉलीडे वैसे देखा जाए। हाँ, हर दिन हमारे लिए संडे है, छुट्टी है। हाँ, तो लेकिन हम हर रोज जीवन के जितने भी घंटे दिन हैं उसमें एंगेज है गुरु और कृष्ण की सेवा के लिए, उनकी सेवा में कोई हॉलीडेज नहीं है, छुट्टी नहीं है। छुट्टी है मतलब क्या है? माया है। क्या है? जिस दिन आपने छुट्टी की भावना मन में ला दी कि नहीं हमें छुट्टी चाहिए, बहुत हो गया, उस दिन सोचो कि आप हाँ माया देवी के गोद में बैठने की इच्छा हो रही है। हाँ, निद्रा वशे गेलो रे राती, क्या है वैसे, जीव जागो गोरा चांद बोले आगे। हाँ, पिशाचीर कोले, कोले मीन्स गोद, कोले कोले बंगाली शब्द है, उनको गोद में, पिशाचिनी के गोद में क्यों बैठे हो, उठो। हाँ, वो चिल्लाते, कौन चिल्लाते? लॉर्ड चैतन्य भक्तिनाथ ठाकुर लिखते हैं, महाप्रभु अपने भक्तों के साथ सुबह सुबह निकलते थे, उदिलो आरिनो पूरब भागे द्विजमनि गोरा अमनि जागे, भक्त समूह लइया साथे। लॉर्ड चैतन्य जैसे सूरज ऐसे उदित होता था तो नवदीप में अपने भक्तों के समूह को लेकर निकलते थे, और उस समय जो सूर्य किरण आते थे और लॉर्ड चैतन्य का बॉडी वैसे ही क्या है, गोल्डन है, तो इतना चमकता था और भक्तों को लेकर चरण नुपुर बाजे और उनके चरणों में नुपुर होते थे, ढोलक या मृदंग की आवाज होती थी, करताल बजते थे और महाप्रभु हर एक जीव के पास जा जाकर उनको जगाते थे कि आप पिशाचिनी की गोद में सो रहे हो, कब तक सोना चाहोगे, उठो और क्या करो, मुकुंद माधव यादव हरि बोलो रे बोले न वदन भरी। वदन भरी का मतलब हमें तो वदन मीन्स मुख, हम मुख भरना भरना चाह मतलब जानते हैं कि प्रसाद से भरा जाए, तभी हमारा मुंह क्या होता है, दो तीन रसगुल्ले आपने डाल दिए हैं गुलाब जामुन तो आपका मुंह बड़ा हो जाता है ना। तो महाप्रभु के इससे नहीं भरो अपना मुंह, क्या करो, नाम से भरो अपने मुंह को, इतना इसे फुला दो, मुकुंद माधव यादव हरि, हाँ फिर इससे भरो अपना मुंह, वंडरफुल। हाँ, तो इस प्रकार लॉर्ड चैतन्य ये टीचिंग्स हमें देते हैं और महाप्रभु इज एक्चुअली महाप्रभु को जानना ही हमारे जीवन का एक प्रकार से लक्ष्य है। लॉर्ड चैतन्य के मूड और टीचिंग्स को हम समझते हैं, सुनते हैं, चर्चा करते हैं तो हम महाप्रभु के इस आंदोलन में हम बहने लगते हैं, बहुत तीव्रता से हम गति करने लगते हैं, आगे बढ़ने लगते हैं। तो इस प्रकार से जो ब्रह्मचारी हैं हाँ उसको ये अनुभव होना चाहिए कि मेरे लिए कोई हॉलीडेज नहीं है, मैं भी वो थोड़ा रेस्ट लेना चाहता है, तो बेस्ट वे टू टेक रेस्ट टू रीड एंड चांट, रीड एंड चांट। यह कभी लगता है ना कि जैसे आप तो इतने इन्वॉल्व नहीं है कई बार सेवा में, मैनेजमेंट या आपको पास कोई ऐसे डिपार्टमेंट्स है ये है वो है, तो कई बार इतनी चीज़ें आपको देखभाल करनी होती है फिजिकली मेंटली, और अपना साधना है और डिवोटीज को संभाल, कितनी सारी चीज़ें, तो लगता है कि हाँ नीड कुछ ये चाहिए, ब्रेक चाहिए, तो बेस्ट ब्रेक इज टू चांट एंड रीड, ये है ब्रेक। ब्रेक मतलब ऐसे ये नहीं भावना रखे ब्रह्मचार्य की, बस अभी कोई ने बहुत हो गया, अभी जन्माष्टमी सारे फेस्टिवल हो गए, थक गया मैं सेवा मैनेजमेंट सब करके, अभी ब्रेक चाहता हूँ। हाँ, ब्रेक का मतलब है ना कि केवल सोऊंगा खाऊंगा, नहीं, ब्रेक मतलब चैंट एंड रीड। तो इस प्रकार से जो ब्रह्मचारी हैं उसके जीवन में सैलरी भी नहीं है। हाँ, हमारे हमें क्या है, हम तो बेगर हैं, हम तो ऐसे नौकर हैं जो बिना सैलरी के काम कर रहे हैं। ये हमारी परीक्षा एग्जाम, और ये भावना होनी चाहिए कि मुझे सैलरी नहीं चाहिए। और लॉर्ड चैतन्य ये बात कहते हैं अंत्य लीला में, अपने शिक्षाष्टकम को एक्सप्लेन करते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हाँ महाप्रभु कहते हैं दास करी वेतन मोरे देह प्रेम धन, कहते कि मैं आपकी नौकरी करने के लिए तैयार हूँ। कहते कि दास करी, मुझे दास बनाओ, दास करी वेतन मोरे, वेतन मीन्स सैलरी, सैलरी क्या दो, देह प्रेम धन। देखिए महाप्रभु कितने चतुर हैं कि मुझे नौकरी में लगाओ हे कृष्ण आपके, लेकिन मुझे सैलरी क्या चाहिए, प्रेम धन चाहिए, धन चाहिए, लेकिन कौन सा, कृष्ण प्रेम धन। तो इस प्रकार से जो ब्रह्मचारी हैं, ये हमारा एटीट्यूड ब्रह्मचारी जीवन में होना चाहिए। और इस प्रकार से हम यदि अपनी भावना को बनाए रखते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ते हैं। तो चैतन्य चरितामृत के तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं विदाउट सिंसियर एंडेवर इन डिवोशनल सर्विस वन कैनॉट ऑब्टेन लव ऑफ गॉड हेड। हाँ, तो हमें यह नहीं कि सब कुछ अपने आप होगा, ये मत सोचो कि प्रसाद की प्लेट अपने आप आ रही है मेरे सामने तो भक्ति और सब चीज़ें अपने आप आएगी, नहीं, हमें एंडेवर करना होगा, प्रयास करना होगा भक्तों के संग में आगे बढ़ने के लिए सिंसियरली। और यही ट्रेनिंग लेना होगा कि मुझे सीखना है, हाँ, क्राइंग सीखना है, मुझे क्या सीखना है, रोना सीखना है, किसके लिए, कृष्ण के लिए, क्योंकि अल्टीमेट हम सबको यही सीखना है एक्चुअली। नहीं तो माया देवी रुलाती है, रावण, रावण शब्द का अर्थ क्या है, जो सबको रुला दे, उसे क्या कहते हैं, रावण। तो आप फिर किस, कोई भक्त आपको तंग कर देता आपको उसको रावण मत कहिए, है ना। तो जो सबको रुला दे वो रावण है। तो हमें यही, हमें प्रयास होना चाहिए, हमें खूब एंडेवर करना चाहिए कृष्ण भावना के हर एक एक्टिविटीज़ को करने के लिए, और तब मे भी हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सकता है। तो प्रभुपाद कहते हैं भागवतम के एक तात्पर्य में एन ईजी गोइंग लाइफ एंड अटेनमेंट ऑफ परफेक्शन इन ट्रांसेंडेंटल रियलाइजेशन कैनॉट गो टुगेदर। तो ये चीज़ है ईजी गोइंग लाइफ। हाँ, तो कई बार ऐसा भी हो जाता है, हम बड़े मंदिर में हैं, यहाँ इतनी सुविधाएं हैं, कल हम फरीदाबाद में थे तो वहाँ इतनी सुविधाएं नहीं हैं, तो लेकिन यहाँ कई साल ऐसे बीतने के बाद लगता है कि लाइफ ईजी जा रहा है, और फिर कई बार ऐसे लगता है कि कुछ यही लाइफ अच्छा है, क्योंकि कोई ऐसी स्ट्रगल नहीं है। स्पिरिचुअली भी हम स्ट्रगल नहीं करना चाहते अपने चैंटिंग, अपनी साधना, अपनी सेवा में, जस्ट मतलब करना है इसलिए करते हैं। हाँ, चलती का नाम गाड़ी, जो चलती है उसको क्या कहते हैं, गाड़ी। तो इस प्रकार से ब्रह्मचारी लेजी हो जाता है, हाँ, एंडेवर नहीं करता, और कहते हैं अच्छा इजी गोइंग लाइफ, और फिर वो सोचे कि आप परफेक्शन भूल जाओ, कोई परफेक्शन नहीं मिलेगा अपने जीवन में। ये दोनों चीज़ें प्रभुपाद कहते हैं एंड इजी गोइंग लाइफ एंड अटेनमेंट ऑफ परफेक्शन इन ट्रांसेंडेंटल रियलाइजेशन कैन नॉट गो टुगेदर। तो ये जो दो चीज़ें हैं वो कभी भी साथ साथ नहीं चलती। तो इसलिए हमें बारंबार ये मेडिसिन आवश्यक है, बारंबार हमें सुनना चाहिए। लेजीनेस आ रहा है तो पूछे क्या करूँ प्रभु जी, बहुत लेजीनेस आ रहा है, ये करना, तो उत्साह से हम कार्य करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये जिस प्रकार से जो ब्रह्मचारी हैं उसकी जो भावना है भक्ति में होता है तो होनी चाहिए। तो बेसिक प्रिंसिपल यही है कि हमें अधिक से अधिक शरणागत होना है, श्री गुरु और कृष्ण के चरण कमलों के प्रति। तो शरणागति का मतलब ही है कि आप तैयार हो उनकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए सिंसियरली। हाँ, चाहे हमें कष्ट भी क्यों ना उठाने पड़े। देखो श्रील प्रभुपाद हैं, हाँ 70 साल की आयु में उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने का प्रयास किया, सफल हो गए। लेकिन कितना उन्हें कष्ट उठाना पड़ा, स्ट्रगल आप पढ़ेंगे लीलामृत तो आपको पता चलेगा। हाँ प्रभुपाद, उनके पास ना रहने की सुविधा थी ना प्रसाद, हाँ अकेले खुद कुक करते थे, वो खुद अपने कपड़े धोते थे, खुद कुकिंग करते थे और सारे कार्य करते थे। उसके अलावा जब उन्होंने मूवमेंट शुरू किया तो खुद जो लड़के आते थे उनके लिए कुकिंग करते थे और वो सारे शराबी आकर खाकर चले जाते थे, प्लेटें और बर्तन वैसे रहते थे। प्रभुपाद फिर रात को सब खत्म होने के बाद अकेले सारा बर्तन सफाई करते थे, सारे प्लेट सारे जो बर्तन है सफाई करके रखते थे फिर दूसरे दिन। तो इस प्रकार से हम सोच नहीं सकते कि श्रील प्रभुपाद एक ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने सारी चीज़ें हमें सिखाई हैं। तो यह है एक्चुअली रियल जो वैष्णव एटिकेट हम सीखना चाहते हैं तो प्रभुपाद का लाइफ है, जो उन्होंने वैष्णव सदाचार प्रभुपाद के हर एक एक्टिविटी से झलकता है। वैष्णव सदाचार आपको ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वैष्णव सदाचार जानना है तो श्रील प्रभुपाद के जीवन से हम समझ सकते हैं। हरे कृष्णा। छः कल बताऊंगा, 4 पॉइंट बताए थे, याद नहीं आ रहा मुझे। अनुकूलेश संकल्प प्रतिकूलेश वर्जनम, रक्षित इति विश्वासो भोक्तृत्वे वर्णम मुखा, वो आता है आप वो देख लीजिए, मुझे याद नहीं आ रहा है।
डिवोशनल सर्विस इन अ कॉम्पिटिटिव सेंस, कैसे होता है?
कॉम्पिटिटिव मींस
कंपटीशन के साथ होता है ना, डिवोशनल में कंपटीशन मतलब और
स्पिरिचुअल कंपटीशन। हां स्पिरिचुअल कंपटीशन आध्यात्मिक जगत में होता है स्पिरिचुअल कंपटीशन, जैसे गोपियां सर्व करना चाहती हैं हाँ राधा कृष्ण को अलग अलग वेश है, जैसे गोप सखाज हैं वो भी सर्व करते हैं हाँ कृष्ण को। अब देखेंगे कृष्णा बुक में आता है वो चैप्टर, जैसे एक एग्जांपल है जब वो कृष्णा और बलराम जाते हैं तो वो कृष्ण को छूना चाहते हैं तो दौड़ते हैं, वो सोचते हैं मैं इस पहले छू मैं छू, या ऐसे काफ़ी एग्जांपल्स है वहाँ। तो हमें भी ये कंपटीशन मतलब हमें ये कंपटीशन में ये भावना नहीं होनी चाहिए कि मैं उससे बड़ा बनूँ या उससे बड़ा कहला, उन्हें तो कई बार ये स्पर्धा में ये भावना रहती है। हम जब आगे होते हैं तो हमें क्या भावना होती है हमारे मन में, जब आगे होते सबसे आगे हो आप रनिंग में मैराथन में तो आपको क्या रह लगता है, हाँ तो मैं ही डिवोटी हूँ।
Krishna is more clever than us. He can understand how much painstaking devotee devotional service.
How much painstaking.
Kitna pain.
Look at you.
Krishna ke seva ke liye.
Krishna
seva ke liye.
Pro karib वैसे तो मनुष्य भेजा था अधूरा था तो उसको पूछना है। Krishna की 64 qualities हैं और राधारानी की
25 तो दी है चिल्ला भक्तिनोद ठाकुर ने चैतन्य शिक्षा में, बट हमने
पढ़ा है ना कि वो सेवन वन एंड वन ना सेवन डिफरेंट नहीं है वो राधा
तो होगी एक्चुअली, लेकिन जो मेन 25 गुणों को वर्णन किया है कैसे राधा रानी के गुण, पहले वृंदावन टेम्पल में लगी होती थी राधा श्याम सुंदर के, अभी 4-5 साल से नहीं है, 4 साल नहीं तो 25 क्वालिटी राधा रानी की टंगी होती थी आल्टर के सामने। ठीक
हाँ
शाम के प्रसाद में भी राइस यार बहुत ज़्यादा नहीं खाना, वो मतलब हर एक को पता है कि मेरा कोटा कितना है ना अकॉर्डिंग, और सुबह भी क्योंकि एक्चुअली शाम का जो गैप होता है ना इसलिए हम सुबह बहुत ज़्यादा प्रसाद पाते हैं। चलो ये प्रसाद हम क्लास अलग होगी, एटिंग के ऊपर बनाऊंगा
मैं। और ये काम करते हैं जैसे बाहर के बहुत लोग हैं चिंता करते हैं, उनको हमें चिंता होनी चाहिए, तो उसे लोगों का तो बाहर की जो मतलब कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि जो इस काम में लगा उनको रजोग नहीं इतना इतनी इतनी वो करते हैं सेवा करते हैं तो ये, लेकिन ये भगवान के लिए रजोग
नहीं है। नहीं नहीं भगवान की सेवा में रजोगुण होता नहीं वैसे, भगवान की सेवा तो सत्व या शुद्ध सत्व में ही होती है एक प्रकार से, तो रजोगुण लगता है बाहरी रूप से हमें रजोगुण लगता होगा लोगों को ना, भाग रहे दौड़ रहे हैं, लेकिन जहाँ कृष्ण का स्मरण हो रहा है तो वहाँ रजोगुण का प्रश्न ही नहीं है। नहीं लेकिन फिर भी हम प्रैक्टिस क्या प्रैक्टिशनर क्या कहते हैं, हाँ तो अभी प्रैक्टिस कर रहे हो आप डॉक्टर की या तो आप सोचे कि डॉक्टर बन गया, नहीं क्या आवश्यक है धीरे धीरे
स्मरण कैसे जॉब कर रहे हो
जॉब मतलब
सॉरी अपना सेवा करने
हाँ तो बिफोर सर्विंग यू शुड थिंक आई एम टू मैं जो है कृष्ण के लिए करने जा रहा हूँ, कम से कम ये एक सोचो आप, और प्रणाम करो उस सेवा के लिए कि मैं प्रेयर करो कि हे गुरुदेव मैं कृष्ण के लिए सेवा कर सकूँ, तो ये सोचना ये एक श्रीधर महाराज ने बताया था मेरे नोट्स है किसी और बुक में इससे रिलेटेड, डिवोशनल एटीट्यूड समथिंग ऐसे सेवा से रिलेटेड है, वो अलग से मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो यह है कि शुरू करने से पहले हम सोचें ये कृष्ण के लिए है, और हमेशा सोचें कि मैं कृष्ण का अंश हूँ, मैं वो अंश हूँ जीवलोक में, तो हर समय आप कृष्ण से कनेक्टेड हो जाओगे। हाँ कृष्ण से क्यों, अब किसके अंश हो, कृष्ण के अंश हो, तो मैं अंश हूँ, मैं अंश हूँ कृष्ण। ये कुछ ऐसे ना प्रैक्टिकल कुछ ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनसे हम अपने डेली लाइफ में स्मरण कर सकते हैं कृष्ण को, जो हम याद दिलाया अपने आप उसमें से एक है मैं कृष्ण का अंश हूँ, आप कृष्ण के अंश हो तो आप हर समय सावधान रहोगे जब भी आप कृष्ण की सेवा, जब आप सेवा करते हो तो उससे पहले आप प्रेयर करो स्पेशली गुरुदेव को।
सेवा इतनी करते हैं छोड़ जाते हैं, फिर ऐसा होता है कि हमको सोने की इच्छा होती है या आराम करने की इच्छा होती है, तो उस समय से लेकर उस समय बिल्कुल ऐसा मन नहीं होता कि बस कैंटीन करने से उसमें कैंटीन ऐसे जब करनी चाहिए।
नहीं नहीं एक्चुअली वो ब्रेक की बात आ रही थी, ब्रेक का मतलब जैसे काफ़ी जैसे आप सोचो 15 दिन आप लगे हो कई सारे आपके पास हेड है कई सारे सेवाज है, तो लगता है कि पढ़ नहीं पा रहा हो रीडिंग नहीं कर रहा हो, तो ब्रेक का मतलब है ऐसी ब्रेक की भावना नहीं रखनी चाहिए कि नहीं अभी ब्रेक लेता हो ताकि बस एक हफ्ता कुछ नहीं बस नो मंगल आरती नथिंग सोते रहो, ऐसा ब्रेक नहीं, ब्रेक मीन्स just I want to stay and chant and read bus. कई बार एक्चुअली आपके पास कई सेवाज होती है ना तो आप ये हो जाते हैं हम नॉट दिस हम कोई बिग साधु या हम महाराज जैसे नहीं कर सकते, और हमारे ऊपर इतनी जिम्मेदारी दी गई इतने सेवा दिए करना तो ये हो जाते हैं, फेस्टिवल्स आ गए कुछ आपके लिए तो है नॉर्मल आपका लाइफ है, आपको शेड्यूल तो फॉलो करना है आपको कुछ भी नहीं
है। एक लेक्चर में बता रहे थे रीडिंग का इंपॉर्टेंस बता रहे थे या वैष्णव सेवा का बता रहे थे कि गोपाल ने सिर्फ जो शुरू शुरू में लोग आते थे उनको कहते थे, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं भक्ति में फिर बताते हैं कि ये कुछ भी करनी पड़ेगी।
हाँ वो तो है ही चैंटिंग डांसिंग फास्टिंग, क्योंकि चैंट करना है तो आपको जानना होगा ग्रेटनेस, प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण की ग्रेटनेस जाने बिना आप उनको सर्व नहीं कर सकते, तो इंक्लूड है उसमें, तो एक प्रकार से ये एंकरेज करने के लिए भी है, एंकरेज डिवोटी और वी नीड एंकरेजमेंट, एक्चुअली हमें हर समय एंकरेजमेंट और एप्रिशिएट क्या कहते हैं एप्रिशिएशन चाहिए, चाहिए कि नहीं, हाँ लगता है कि नहीं प्रशंसा हमें चाहिए थोड़ी बहुत ताकि हम आगे बढ़े और पुश करें। एनकरेजमेंट मींस पुशिंग उत्साहित उत्साहित ये स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं सुनते हैं तो हमें वो मिलता है एनकरेजमेंट मिलता है। श्रील प्रभुपाद के गौर भक्त वृंद की गौर प्रेमानंदे।